अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तम् येन चराचरम् तत्पदम् दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शहनावतु शहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। वसुदेवसुतं देवं कंसचाडुरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की। प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण। हरे हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 बोली सच्चिदानंद घन भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राजा रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जगज्जननी अम्बे माता की सद्गुरुदेव भगवान की अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्व जगत नियंता परम सत्ताधारी घटघटवासी भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर आत्मस्वरूप परमात्म स्वरूप भक्त परम हर्ष उल्लास आनंद के ये क्षण परम पावन दिव्य भूमि स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम का ये सुंदर भवन महापुरुषों का तप तेज जहां पर पसरा हुआ भगवान की महती अनुकंपा हमारे आपके ऊपर हम इस सुंदर प्रातःकालीन सत्र का अमृत बेला सुंदर शुभ शांत समय जिसका आनंद हम लोग नित्य प्रति 365 दिन लेते हैं ऐसा ये हमारे ऊपर प्रभु की महापुरुषों की कृपा का अनुभव वर्तमान में प्रातःकालीन सत्र में हमारा जो विषय है श्रीमद् भागवत दशम स्कंध में भगवान के जो बाल लीला चरित्र हैं उनके अंदर भरे हुए आध्यात्मिक और सामाजिक विज्ञान जिसको कहा जाता है उसके जो अर्थ या तात्पर्य भरे हुए हैं यही भगवान की साधारण सी दिखने वाली बाल चपल लीलाओं का विशेष प्रयोजन है जिसके लिए भगवान आते हैं लेकिन इस समय स्वयं वर्षा ऋतु और शरत ऋतु को माध्यम बनाकर सुखदेव जी राजा परीक्षित को सीधा स्वयं ही अपना उपदेश कर रहे हैं और हम लोगों ने विचार किया कल कि किस प्रकार से जो है जिस वर्षा काल समाप्त होने पर शरद ऋतु के व्याप्त हो जाने पर बहुत सारे झरने उनमें से जल निकलता है और बहुत सारे झरने अपने जल को बंद कर देते हैं ठीक इसी प्रकार से योगी जन ज्ञानी जन भी जो है अपने ज्ञान को अधिकारी के प्राप्त होने पर जो है उसका दान कर देते हैं और अधिकारी ना मिलने पर जो है चाहते हुए भी उसको दे नहीं पाते। गिरियो मुमुचस्तोयम क्वचिन ना मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। तो इस प्रकार से सुखदेव जी शरद ऋतु को माध्यम बनाकर क्या क्या घटित होता शरद ऋतु में, उसी प्रकार से जो है सुखदेव जी उपदेश करने की चेष्टा कर रहे हैं राजा परीक्षित को। उदाहरण देते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को, देखिए क्या सुंदर उदाहरण है। नैवा विदंचीयमाणम जलम गाध जले चरा यथायुरन्वहम क्षय्यम नरा मूढ़ा कुटुम्बिना। कहते हैं नैवा विदन छीयमाणम, कहते हैं ये ना जानते हुए कौन जलम गाध जले चरा, जो छोटे छोटे गड्ढों में जल भर जाता है वर्षा काल में और समय समय उन गड्ढों के अंदर उन जल के भर जाने से जगह जगह पर आपने देखा होगा कि जहां गड्ढे होते हैं बहुत दिनों तक वर्षा काल का जल भरा रहता है और इसका परिणाम ये होता है कि उस भरे हुए जल में नित्य प्रति बारिश होती है, वो जल समाप्त नहीं होता और परिणामतया उसमें अनेक जीवों की सृष्टि हो जाती है और वो छोटे छोटे जीव उस गड्ढे में भरे हुए जल को ही शाश्वत मान लेते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं नैवाविदन छीयमाणा, वो जलचर ये नहीं जानते हैं कि एक दिन ये गड्ढे का जल बहुत थोड़ा सा है और परिणामतया जब शरद ऋतु प्रारंभ होगी तो ये गड्ढे का जल जो है सूख जाएगा, लेकिन इन बातों से अनभिज्ञ वो जलचर उस जल को हमेशा के लिए शाश्वत मानकर उसमें ही अपने परिवार की वृद्धि करते रहते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से राजन यथा आयु, जिस प्रकार से हमारी जो आयु है, कहते हैं क्षय्यम, ये जो क्षण क्षण क्षीण होने वाली जो आयु है ना, ये एक एक क्षण जो भी क्षण हमारा जा रहा है ये वापस लौटकर आने वाला नहीं है, ये जो आयु का खेल है। कहते हैं नरा मूढ़ा कुटुम्बिना, कुटुम्बिना यानी जिन्होंने जगत के कार्यों को ही शाश्वत मान लिया, जैसे वो गड्ढे के जल को शाश्वत मान लेते हैं जीव, इसी प्रकार से शरीर और शरीर के धर्मों को जो हमारे लिए बिल्कुल गौड़ थे, गौड़ का मतलब द्वितीय है ना, एक होता है नंबर एक पे आपका क्या कर्तव्य है और नंबर दो पे आपका क्या कर्तव्य है, दोनों चीजें हैं। तो नंबर एक कर्तव्य क्या है, नंबर दो कर्तव्य क्या है, तो पहले नंबर एक को निपटाया जाता फिर बाद में नंबर दो का आता है। तो हमने जो हमारा गौड़ विषय था यानी संसार और संसार के धर्म यानी शरीर और शरीर के धर्म, इनको ही हमने अपने जीवन का मुख्य विषय बना लिया, इसका परिणाम यह हुआ कि कुटुम्बिना, कुटुम्बिना माने अपने सांसारिक जगत को विशाल करके, जैसे उस गड्ढे के छोड़े से जल में ही महाराज उस कीट ने अपना पूरा परिवार बसा रखा है। अगर आप कभी गौर से अध्ययन करें उस गड्ढे के भरे हुए जल में रहने वाले जीवों का, तो महाराज उनके साथ आपको पूरा का पूरा परिवार दिखाई देगा वहां। इसी प्रकार से ये जो आयु है, ये जो गड्ढे का जल है, जो हमारे शरीर की दिन प्रतिदिन क्षीणता है, एक शरीर के धर्मों को प्रथम धर्म मान लेने वाला ये भूल जाता है कि क्षण क्षण करके ये आयु हमारे हाथ से क्या होती जा रही है, इस नौका की जो गारंटी कार्ड है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है ना, देखा होगा आपने, आप सामान खरीदने जाते हैं तो सामान खरीदने के संग आपको एक साल की क्या मिलती, पहले गारंटी मिलती थी अब वारंटी मिलती है ना, गारंटी वारंटी में अंतर है ना, गारंटी का मतलब कि सामान खराब हो जाएगा हम दूसरा सामान देंगे और वारंटी का मतलब होता है कि सामान दूसरा नहीं मिलेगा, जो सामान आप ले जा रहे हो इसी को ठीक करके दिया जाएगा, लेकिन हम उस सामान को लाकर भूल जाते हैं महाराज है ना, और एक साल गुजर गया और उसके बाद सामान खराब हुआ तो हम तुरंत जो है कार्ड निकाल के देखते हैं कि बचा है कि नहीं, तो पता लगा इसका समय जो है क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। तो उसी प्रकार से महाराज ये जो सांसारिक धर्म को प्रथम धर्म मान लेने वाला क्षण क्षण क्षीण होने वाली आयु को बिना समझे महाराज एक बड़ी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है और वो ये भूल जाता है कि ये गड्ढे का जल एक दिन क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु के जाते ही समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से महाराज हमारे आपके शरीर का भी क्या हो जाएगा, एक दिन गारंटी कार्ड खत्म हो जाएगा महाराज, है ना। फिर वापस इसमें कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, वर्षा फिर अगले बार आएगी, है ना। यानी कहने का तात्पर्य है जब आप फिर से नूतन जन्म को प्राप्त होंगे तब वर्षा ऋतु के दर्शन होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, सुखदेव जी का राजा परीक्षित, उस गड्ढे के जल का ये जीव बड़े प्रेम से महाराज अपने परिवार की वृद्धि करता है और उसको सजाता है, रचता है। उसको ऐसा लगता है कि ये गड्ढे का जल कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अविवेकी जो है गृहस्थ, ये भूल जाता है कि एक दिन हमारी आयु जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी महाराज, और हमारा ये रचा बसा सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो सुखदेव जी इस प्रकार से जो है कुटुंब के धंधों में, यानी गृहस्थ जीवन के गौड़ जो कार्य हैं, जो द्वितीय नंबर के कार्य थे, वो सब हमने जो है प्रथम नंबर पे जो है इस्तेमाल कर डाले, और जिसको याद करना चाहिए था उसी को हमने क्या कर दिया, भुला दिया महाराज, है ना। इसीलिए अंत में महाराज परमेश्वर याद नहीं आता है, है ना। ये बड़ी विचित्र बात है, हम लोग जो सोचते हैं ना कि आखिरी में भगवान को याद कर लेंगे, तो उसका सीधा सा जो है प्रमाण है, एकांत में बैठ जाओ और एकांत में बैठ के तुमको समझ में आ जाएगा कि तुमको क्या याद आता है, संसार याद आता है या भगवान याद आता है। क्यों भाई, क्या याद आता है? याद आते हैं भगवान। एकांत में बैठकर आपको पता चलेगा कि अंत में आप परमेश्वर को याद कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ज्यादातर देखा जाता है कि एकांत में बैठते ही आपके भूत भविष्य सब नाचने लगते हैं आपके मन में, भूत की जो आपके कार्य हैं वो, और भविष्य में आपने जो अपनी जो है दिवा स्वप्न, है ना। एक होता है रात्रि स्वप्न जो हम रात में देखते हैं, एक होता दिवा स्वप्न जो हम दिन में खुली आंखों से देखते हैं महाराज, भविष्य की कल्पनाएं जिसको कहा जाता, उसमें हम अपने समय को क्या करते हैं। ये एकांत सेवन में आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में अंत में आपको परमेश्वर याद आएगा अथवा नहीं आएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार से ये शरद ऋतु आगे बढ़ी और महाराज वहां पर क्या होने लगा, गाधवारी चरास्तापम बिंदच्छर दर्कजम यथा दरिद्र कृपणा कुटुंब विजितेन्द्रिया। कहते हैं धीरे धीरे वो जो गाध यानी गड्ढे का जो जल था, सूर्य की किरणों ने, प्रखर किरणों ने महाराज उस जल को सोखना प्रारंभ कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि पहले तो महाराज वो गड्ढा पूरा भरा रहता था जल से, तो वो छोटे छोटे जीव जो उसके अंदर सपरिवार उत्पन्न हो गए थे महाराज, बड़ा आनंद लिया। लेकिन धीरे धीरे जब सूर्य ने अर्कजम महाराज सूर्य भगवान नारायण ने जो है उनको जो है अपने तप तेज से खींचना जल को प्रारंभ किया, तो वो जल महाराज बहुत थोड़ा सा रह गया, और थोड़ा सा जल जो है महाराज सूर्य की किरणें पड़ते ही गर्म हो जाता। जब वो जल महाराज गर्म हुआ तो वो छोटे छोटे जो जीव भरे हुए गड्ढे में आनंद ले रहे थे, उनको क्या होने लगी, पीड़ा का अनुभव होने लगा। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से, कहते हैं गाधवारिश चरातापम, तपने लगे महाराज, जलने लगे, है ना। क्योंकि यथा दरिद्र कृपणा कुटुंब विजितेन्द्रिया, कहते हैं गृहस्थ, कौन सा गृहस्थ, जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर जो है विजय प्राप्त नहीं की, यानी जो अपनी इंद्रियों के पूर्णतया वशीभूत होने के कारण उसको जो है ना, जो है यहां पर सुखदेव जी ने उसको दरिद्री कहा है। दरिद्री मतलब राजा भी क्या कहलाएगा, दरिद्री कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, दरिद्री का मतलब गरीब से नहीं है। दरिद्रता क्या है, है ना, दरिद्रता क्या है, हैं? जो सांसारिक भाषा में दरिद्रता का मतलब पैसे का गरीब, धन का गरीब, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में दरिद्रता क्या कहलाती है? हाँ, ये जो दरिद्रता है, कौन सी? विचार शक्ति की दरिद्रता, जो हमारे अंदर सत्य का विचार ही नहीं आया और असत्य का ही हम पोषण करते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि महाराज हम जो है अजितेंद्रिय होने के कारण उन प्रखर किरणों में देखो उसकी विशेषता क्या, उस गड्ढे की, वो जलचर जीव सपरिवार उसी के अंदर तड़फ रहा है मगर वहां से बाहर निकल नहीं सकता, उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता और वहीं पर तड़प तड़प कर उस गर्म जल के अंदर सपरिवार उसकी क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से दरिद्रता और कृपणता के कारण ये जो उसने इंद्रियों के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया और इंद्रियों के स्वामित्व को स्वीकार करने के कारण उसके जीवन में जो विचारों की दरिद्रता और कृपणता आई, कृपणता मतलब कंजूस है ना, ये जो उसके अंदर कृपणता और दीनता यानी दरिद्रता जो आई है किसके कारण? अजितेंद्रिय होने के कारण। उसने कभी अपने विवेक को जागृत नहीं किया कि इस गड्ढे से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, कभी उसने प्रयत्न प्रयास नहीं किया, वो उसी में ही आनंद मौज मस्ती की बातों को सोचता रहा। ये विचार की कृपणता थी, वो जो हमने अपना एक छोटा सा साम्राज्य बनाया था उसी की भावी संकल्पनाओं में कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बड़ा सपरिवार सुखी हो जाऊंगा। लेकिन महाराज यहां तो गति उल्टी है, गड्ढे का जल सूख रहा है, आयु क्षण क्षण क्या हो रही है? समाप्त होती जा रही है महाराज। दांत लगेंगे नहीं, दांत झड़ेंगे महाराज, आंखें वापस नहीं आएंगी, आंखें क्या करेंगी? ये सब इंद्रियां एक एक करके तुम्हारा साथ छोड़ देंगी महाराज, और इसका परिणाम होगा कि ये गड्ढे का जल एक दिन पूरा क्या हो जाएगा। ज्यों ज्यों इंद्रियों ने हमारा साथ छोड़ना प्रारंभ किया, बलवान इंद्रियां जिनके ऊपर हमको बड़ा घमंड था महाराज, जिनके ऊपर हमको बड़ा अहंकार था, एक एक करके हमारा साथ छोड़ती गई और इसका परिणाम ये हो गया मैं अपने आप को इस संसार में दीनहीन लाचार अनुभव करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं ये है जले हुए, उस तपे हुए जल के क्षीण होने का प्रभाव हमारे जीवन में अजितेंद्रिय पुरुष। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि इतना होने पर भी वो समझ जाए, कहते हैं वो भी नहीं है, समस्या ये है कि इतना सब कुछ होने पर भी, इंद्रियों के साथ छोड़ देने पर, कष्टित होने पर भी वो परमेश्वर को याद नहीं करता, अपने दुखों को रोता रहता। जो मुख्य सत्संग जो चेतना जगाना चाहता है वो उसका मुख्य लक्ष्य ही है, वो अपने दुखों को रोता रहेगा लेकिन आनंद कंद भगवान को याद नहीं करेगा। बोलो, ये है, ये विवेक और अविवेक की स्थिति है कि वास्तविकता में तो कम से कम उस समय तो अपनी गलती का एहसास करके, अपनी गलती स्वीकार करते हुए, अपनी कृपणता अपनी दरिद्रता को स्वीकार करते हुए, उस समय तो हमको कम से कम भगवान के चिंतन को प्रारंभ कर देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसका अभ्यास ही रोने का बना हुआ, रोता रहेगा, अपने दुखों को सुनाता रहेगा, दूसरों को बताता रहेगा, एक समय ऐसा था, एक समय वैसा था, ऐसी बातें लोग करते रहेंगे लेकिन भगवान का चिंतन नहीं करेंगे। ये हमारी कृपणता है, ये हमारी दरिद्रता है। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से एक दिन वो गड्ढे का जल, वो गाध का, वो गड्ढे का जल जो है सूख जाता है और वो महाराज जो है वो कीट का पूरा परिवार उसी के अंदर जलकर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये हमारे आपके रोज के अनुभव हैं। सुखदेव जी कहते हैं इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है शरद ऋतु आगे बढ़ी महाराज, वर्षा ऋतु के जितने गुण थे वो समाप्त होने लगे। क्या हुआ? शनै शनैर्जहु पंकम स्थलान्यामम च वीरुधा यथाहम ममताम धीरा शरीरा दिशुनात्मसु। कहते हैं शनै शनैर्जहु पंकम, धीरे धीरे जो है जगह जगह जो गीला कीचड़ था वो सूखने लगा और सूख करके जो है वो पूर्णतया एक दिन धूल में बनकर वो कीचड़ की पूरी जो है स्थिति थी वही समाप्त हो गई महाराज। हैं पंकम स्थलान्यामम च वीरुधा, और जो चारों तरफ गड्ढों के घास पात आदि लगे हुए थे वो भी सब के सब महाराज अपने आप को अलग करने लगे। देखा होगा आपने छोटे छोटे घास के जो है वो तिनके से उगाते हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी सी मोटी सी, लेकिन ज्यों ज्यों वर्षा ऋतु महाराज समाप्त होती चली जाती, वो घास भी गड्ढों से आपके मकानों से वो क्या हो जाती, सूख जाती। कहते हैं अपनी स्थिति से अलग होने लगी। कहते हैं ये क्या है, बोले ठीक इसी प्रकार से यथा हम ममताम धीरा। कहते हैं ये धीर पुरुष जो है ना, जिसको हम ज्ञानवान कहते हैं या साधक कहते हैं या जिज्ञासु कहते हैं, वो धीरे धीरे महाराज ठीक इसी प्रकार से जब उसके अंदर से अहमता और ममता की गांठें क्या होती हैं, अनात्म भाव जिसको शास्त्र की भाषा में कहा जाता है, अतः अनात्म पदार्थों से उसका मोह भंग हो जाता है विचार के द्वारा, ये मैं हूं ये मेरा है, ये जो अहमता ममता है ये उसका साथ छोड़ देती है। जैसे कीचड़ सूख गया वर्षा ऋतु का, है ना, गंदा करने वाला कीच जो था वो सूख गया, व्यर्थ की जो घास इधर उधर जिसका कोई उपयोग नहीं था उगाई थी वो भी महाराज झड़के गिर गई। इसी प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वो जिज्ञासु जो है अपने विचारों के द्वारा पूर्णतया उसने अपने जीवन में आई हुई इस वर्षा ऋतु की गंदगी को महाराज धो के फेंक दिया। और वो गंदगी क्या थी, अहमता और ममता, कोई गंदगी दूसरी नहीं है, एक है अहम ये मैं हूं और ममता का मतलब ये मेरा है। ये जो मैं हूं और मेरा है ये गंदगी जिस दिन साफ हो गई, वर्षा ऋतु किसमें बदल जाएगी, शरद ऋतु में बदल जाएगी, है ना। देखिए ये विशेषता है महाराज, वर्षा ऋतु में गंदगी का साम्राज्य होता है और शरद ऋतु में महाराज शीतलता का है और सफाई का साम्राज्य आ जाता है। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से साधक जिज्ञासु पुरुष जो है पूर्णतया महाराज अपनी मुक्ति का आनंद लेने लगता है, क्योंकि उसने अपने अंदर जमा हुए इस कीच को साधना के माध्यम से, है ना, वेदांत साधना। वेदांत साधना का मतलब क्या है, विचारों के द्वारा अपने आप को नित्य निरंतर समझाना। कल आपको बताया था ऐष्णाओं को छोड़ना, ऐष्णाओं को समाप्त करना इतना आसान नहीं, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, और वो साधना है विचार साधना। बारंबार आपको विचार करना पड़ेगा, क्यों किस लिए, ये जो प्रश्न है अपने आप से पूछने पड़ेंगे और अपने आप ही इसका उत्तर देना पड़ेगा। हमारे प्रश्न करने से, हमारे उत्तर देने से आपकी ऐष्णाएं समाप्त होने वाली नहीं है। इसी को कहते हैं स्वयं प्रयास या स्वयं का पुरुषार्थ। अपने आप से प्रश्न करो कि तुमने अभी तक जो कुछ भी इच्छाएं की हैं, अपने आप से पूछो क्या वो पूरी हुई हैं, फिर देखो तुमको क्या उत्तर मिलता है। फिर उसके बाद जो इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो गई हैं उनके लिए अपने आप से प्रश्न करो कि तुमने जो अपनी इच्छाएं पूरी हो गई उससे तुमको क्या मिला, उसका फिर देखो अंदर से उत्तर क्या आता। जब इस प्रकार से हम क्यों किस लिए अपने आप से प्रश्न करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, वित्तेषणा है जिसको कहते हैं, पुत्रेषणा, लोकेषणा, है ना, ये जितनी भी इच्छाएं हैं हजारों इच्छाएं हैं, और जिन इच्छाओं के लिए हम समर्पित हैं महाराज, हमने देखा है लोग पागल हो जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाते हैं। तो ये जो हम अंधापन अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने जीवन में प्रकट करते हैं, ये केवल एक ही तरीके से जा सकता है, उसका नाम है क्यों और किस लिए। जब आप हर इच्छा के संग क्यों और किस लिए, और उसके बाद तीसरा क्या मिला, जब आपको क्या मिला का उत्तर आएगा तो वहां पर हर प्रश्न का एक ही उत्तर निकलेगा, क्या मिला, तो वहां पर उत्तर केवल एक है, कुछ भी। क्यों भाई, अरे इतनी आयु में आपने इतने भोग भोग डाले, है ना, दुनिया भर के खाने पीना पहनना जो भी भोग हैं संसार में खूब जम के महाराज आपने उन भोगों को क्या किया, भोगा कि नहीं भोगा, कुछ छोड़ा खाने पीने में, कुछ बचा है, तरह तरह के पदार्थ खाए हैं, लेकिन जब आप अपने आप से प्रश्न करोगे कि क्या वास्तविकता में तृप्ति हो गई, तो अंदर से उत्तर आता है अभी तृप्ति नहीं हुई महाराज। फिर तो इतनी जो इच्छाएं हमने की थी उसका परिणाम क्या हुआ भाई, एक बात बताओ, आपका आपकी संतान जो है कहे मुझे व्यापार करना है, आप मुझे पैसा दे दो माता पिता से, अब माता पिता ने उसको एक बार अपनी जमा पूंजी सब दे दी महाराज और कह दिया व्यापार करना शुरू कर दो, अब वो रोज महाराज माता पिता से कहे कि मुझे जो है पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो क्या माता पिता स्वीकार करेंगे इस बात? एक सीमा पे जाकर माता पिता कहेंगे बेटा बस हमारे पास जो था हमने सब कुछ क्या कर दिया, दे दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम अपने संग ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों भाई, आप तो यही चाहते हो कि भोग जो है अनवरत हमको क्या होते रहे, प्राप्त होते रहे, और उन भोगों को मैं जीवन पर्यंत मरते दम तक भोगता रहूं महाराज। यहां पर आप ये जो नियम कानून है इसको लागू क्यों नहीं होने देते कि बस इतना ही है इसके आगे नहीं है? तो शास्त्र कहते हैं महाराज जब आप इस प्रकार के प्रश्नों से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तब ये जो कीचड़ है अहमता और ममता का, ये इतना आसान नहीं है कि आप सोचो आज आप सुन गए कि हाँ महाराज ना अहमता है ना ममता, ना मैं हूं ना मेरा है, सुन लिया तो इससे कोई समाप्ति नहीं होने वाली, कुछ नहीं होगा। ये तो खाली एक बीज रूप में आपको मिल गया, बीज मंत्र मिल गया। अब इस बीज मंत्र का अनुसंधान स्वयमेव आपको करना है, स्वयमेव अपने आप से प्रश्न करना अहमता ममता के, मुझे क्या मिला, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या प्राप्त किया और क्या कर सकता हूं। तो जब आप इनके उत्तर खोजेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट उत्तर आपके अंदर से निकलेंगे और उन उत्तरों से ही आपको शाश्वत तृप्ति की क्या होगी, प्राप्ति होगी, है ना। तृप्ति हमारे कहने से नहीं होगी, भगवान के कहने से नहीं होगी, शास्त्र के कहने से नहीं होगी, लेकिन जब हमारे अंदर से आवाज आएगी, अपने अंदर से आवाज आएगी, वो जो उत्तर होगा उस उत्तर के रूप में फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत, हाँ ये जो विचार अहमता ममता जिसको कहते हैं मैं और मेरा, ये मैं मेरेपन का ही नाटक हमेशा के लिए जब समाप्त हो जाता है यही ज्ञान का उदय है। इसी को परम ज्ञान कहते हैं, इसी का नाम विवेक है और इसी का नाम परमात्मा की प्राप्ति। ये जब तक अहमता और ममता घेरे हुए यानी देहाभिमान, तब तक हम वास्तविक सत्य को देखते हुए भी क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, है ना। वास्तविक परमात्मा ऐसा नहीं कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, परमात्मा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उस परमात्मा को दिखाई देते हुए परमात्मा को भी देखने को तैयार नहीं है। ध्यान देना, जैसे आप अपनी परेशानी दूर करने के लिए दूसरे की परेशानी को बिल्कुल सुनने को तैयार, सुनाई देती है आपको किसी की परेशानी? जब आप खुद परेशान होते हो तो आप ये चाहते हो कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, और आपको केवल अपनी छोटी सी परेशानी पहाड़ दिखाई देती, और दूसरे की पहाड़ ऐसी परेशानी भी क्या दिखाई देती, बोलो ये स्वभाव है कि नहीं हमारा? तो ये है, ये जो अहमता ममता है, ये जो समस्या परमेश्वर दिखाई होते देते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा, सुखदेव जी कहते हैं इसका कारण कोई और नहीं है, इसका कारण अहमता और ममता उसने छोड़ दिया, और वो जिज्ञासु, वो योगी, वो साधक, वो ज्ञानवान, विवेकवान प्रसन्न हो गया महाराज, है ना। सुखदेव जी कहते हैं देखो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, निश्चलाम्बुरभूतोष्णीम समुद्र सरदागमे आत्मन्युप्रतेशम्यक मुनिर्विपुरतागमः। कहते हैं निश्चलांब भूत उष्णीम समुद्र शरदागमे, शरदागमे शरद ऋतु के आगमन होते ही समुद्र का जल जो महाराज उच्छल तरंगों से जो है उछल रहा था महाराज, है विशाल तरंगे जिसमें लहरें जो है उछल रही थी, सब शांत हो गया, जल गंभीरता को प्राप्त हो गया महाराज और शांत हो गया। कहते हैं जिस प्रकार से आत्मन्युप्रते सम्यक मुनि, मननशील जो साधक है, आत्माराम मुनि जिसको हम लोग कहते हैं, आत्माराम का मतलब आपने देखा होगा ना कि जो हम लोग नाम रख देते हैं किसका, आत्माराम है, आत्माराम का मतलब, आत्माराम का मतलब जो अपनी ही आत्मा में क्या करता है, रमण करता है, उसको हम क्या कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं महाराज। यानी अपने से अतिरिक्त जिसको कुछ दिखाई ही नहीं देता ये आत्मा राम अवस्था कहलाती है, और इसी को हम लोग साधारण भाषा में मुनि शब्द से संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं, मुनि, यानी जिसने निरंतर मननशीलता को प्राप्त कर लिया है, अपने अतिरिक्त जिसको कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसा जो उपरत मन वाला है, जिसका मन जो है पूर्णतया निसंकल्पित हो गया महाराज, उपरत, उपरत का मतलब जिसने संकल्पों विकल्पों का क्या कर दिया, परित्याग कर दिया, और यथावत अवस्था को वो क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है महाराज, उसको शोक दुख मृत्यु किसी की कुछ परवाह नहीं है, है ना। और मृत्यु तो महाराज केवल मनुष्य के अलावा 84 लाख योनियों में देखो कोई भी मृत्यु से डरता नहीं है, सब अपने अपनी मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं महाराज, है ना। हर जीव अलावा मनुष्य के, केवल मनुष्य को ही अगर बता दिया जाए कि कल तुम मरने वाले हो तो महाराज उसकी चैन जो है वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो साधारण से जीव है महाराज, जहां मर गए तो मर गए, जब तक जीवित हैं जीवित हैं, आनंद ले रहे हैं, अंतिम समय तक जो है वो क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार से जो निसंकल्पित हो गया महाराज आत्माराम पुरुष, वो संपूर्ण कर्मकांडों के झमेले को छोड़ देता है ना। आपने देखा होगा कि महापुरुषों को पूजा पाठ नहीं करते हैं, बहुत से महात्माओं को आपने देखा होगा ना कोई व्रत रखते हैं। लोग पूछते हैं महाराज आप व्रत नहीं रखते या पूजा नहीं करते, बहुत से लोग महापुरुषों से ऐसा प्रश्न करते हैं। ये उपरत होने की अवस्था है, कर्मकांड का जो झमेला है वो हमेशा के लिए क्या हो गया, शांत हो गया। क्यों? क्योंकि जितने आप कर्मकांड करेंगे, जितनी ज्यादा आप कर्मकांडों के झमेले में फंसेंगे, इसका परिणाम ये होगा कि आपको उसके बदले में पुण्यों की क्या होगी, प्राप्ति होगी, क्या होगी। हाँ, जितने कर्मकांड करोगे, आप व्रत रखोगे उसके बदले में आपको पुण्य मिलेगा महाराज, आप जो कुछ भी करते जाओगे कर्मकांड सबका आपको हैं क्या मिलेगा, पुण्य रूप में फल मिलेगा। और जब फल मिलेगा तो फल आपको भोगना पड़ेगा कि नहीं, कि दूसरा भोगेगा। अरे भाई जो आपने किया वो आप ही को तो भोगना है, और उसको भोगने के लिए फिर आपको अनेक अनेक क्या लेने पड़ेंगे, जन्म लेने पड़ेंगे। और वो फल किस किस योनि में, भगवान तो अलग अलग योनियों में आपको ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, एक मनुष्य शरीर में ही तो हर फल का सुख मिलेगा नहीं। तो जो जो आपने तपस्याएं आराधनाएं की हैं उन सब के लिए आपको पुण्य। इसीलिए जो है आत्माराम पुरुष सब में अपना ही परमेश्वर का चिंतन करते हुए महाराज संपूर्ण कर्मकांडों के झमेले से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, देखे जाते हैं। लोग इस चीज को समझते नहीं हैं, और बहुत से लोग तो कहते हैं महाराज आपसे तो हम अच्छे हैं, महात्माओं से कहते नहीं महाराज आपसे तो हम अच्छे हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, आप तो कुछ भी नहीं करते महाराज, है ना। ऐसा हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं उन कर्मकांड के झमेलों से मुक्त हुए उपरत जो महात्मा पुरुष हैं, जिन्होंने जो है कुछ भी, और अंततः तो महाराज योगी पुरुष की, आत्मज्ञानी महापुरुषों की स्थितियां देखी गई हैं कि वो तो भोजन भी न नहाना न धोना न कपड़े पहनना, सब क्रियाओं का परित्याग कर देते हैं महाराज, दूसरे ही करते हैं सब। जिसको रखना है इस शरीर को महाराज रखे, नहीं रखना है तो न रखे, प्रकृति के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देने वाले। अगर प्रकृति ने प्रारब्ध में मेरे शरीर को रखा है तो महाराज ये शरीर रहेगा, नहीं रखा है तो कोई चिंता नहीं। तो ऐसे आत्माराम पुरुष महाराज जिनको अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी चीज का भी होश नहीं है, ऐसी अवस्था को उपरत अवस्था कहा जाता है। मुनि की जो है उसको जो है विशेषता दी जाती है, मननशील है। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है शरद ऋतु किस प्रकार शांत निश्चल सागर का जो है स्वरूप दर्शाती है, यही मननशील उपरत महापुरुष की स्थिति है। उसके बाद सुखदेव जी उदाहरण देते हैं, केदारेभ्यस्तपो ग्रहणं कर्षकादृण सेतु भी यथा प्राणैश्रव ज्ञानं तन्निरोधेन योगिनः। कहते हैं जिस किसान जो है फिर से जो है जिन मेढ़ों को बारिश के पानी ने तोड़ दिया था, केदार, केदार कहते हैं जो खेत को पानी रोकने के लिए जो मेढ़ बनाई जाती है, उन केदारों को यानी मेढ़ों को महाराज मजबूत करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अब वर्षा का अब जल तो आएगा नहीं, जो जल है उसको खेत में क्या करना है, रोकना है। तो इसी प्रकार से जो है कहते हैं यथा प्राण स्वज्ञानम तन निरोधेन योगिना, इसी प्रकार से जैसे वो समझदार किसान, वो विवेकवान किसान अपने जल को संचय करने का प्रयत्न करता है मजबूत मेढ़ों को बनाकर, इसी प्रकार से प्रत्याहार के द्वारा अपनी इंद्रियों के निग्रह के द्वारा इंद्रियों को अपने विषयों में न जाने देने के जो प्रक्रिया का रूप है, और उस इंद्रियों के भटकने को रोक कर प्रत्याहार करके वो योगी पुरुष महाराज अपने मन को भगवान की ओर क्या कर देता है ना, मोड़ देता है। जैसे किसान जो है जल की धारा को मोड़ देता है महाराज, है ना, अपने संरक्षण के लिए उसके आगे जल के आगे रुकावट लगाता है और वो जल अपनी दिशा बदल देता है। इसी प्रकार बहिर्मुखी इंद्रियों के स्वभाव को बदलकर वो योगी पुरुष महाराज इसके रास्ते को बदल देता है और ये संपूर्ण इंद्रियां मन सहित परमेश्वर के चरणों का चिंतन करने लगती हैं। ये जो है शरद ऋतु की अवस्था है। सुखदेव जी कहते हैं इसी प्रकार से जो है एक सुंदर और दूसरा दृश्य है। शरद सरदार का सुजानस्तापान भूतानाम उडुपो हरत देहाभिमानजं बोधो मुकुंदो ब्रजयोषिताम। कहते हैं शरद ऋतु का जो अर्क यानी सूर्य है वो महाराज बड़ी कड़ी धूप होती है दिन में, है ना, क्योंकि आसमान बिल्कुल धूल से रहित होकर स्वच्छ हो जाता है, तो पूर्णतया महाराज स्वच्छ आसमान से जो धूप आती है बिल्कुल सीधी आती, इसलिए उसमें और ज्यादा ताप होता है महाराज। तो कहते हैं शरद ऋतु का जो सूर्य है वो बड़ी कड़ी धूप को जो है पैदा करता है और लोग जो है उस ताप को सहन नहीं कर पाते, उनको बड़ा कष्ट होता है ना। लेकिन ज्यों ज्यों महाराज रात्रि नजदीक आती है शरद ऋतु की, भूतानाम मुडुपो हरत, कहते हैं उडगन या चंद्रमा जो है वो महाराज उदय होकर और सुंदर सुंदर जो तारे हैं रात्रि में उदय होकर महाराज उसका जो है पूरा ताप हरण कर लेते हैं। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से देहाभिमानजं बोधो, देहाभिमानी जो जो पुरुष था उसके दुखों को ज्ञान ने क्या कर लिया, हरण कर लिया महाराज, है ना, देहाभिमान को समाप्त, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरते अर्जुन, जिस प्रकार से ज्ञान की अग्नि हमारे संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का नाश कर देती है, उसी प्रकार से प्रातः काल के तपे हुए सूर्य का जो दुख था यानी देहाभिमान के दुख के कारण ये जीव जो रात दिन तापों में जल रहा था उसका दुख शांत हो गया और महाराज वो पूर्णतया परम जो है शीतलता को प्राप्त हो गया रात्रि के समय। इसी प्रकार से महाराज उसको ज्ञान की शीतलता ने हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया, शीतल बना दिया, उसकी बुद्धि के तापों को हरण कर लिया। और यहां पर चूंकि भगवान श्री कृष्ण का ये ग्रंथ है, सुखदेव जी कहते हैं मुकुंदो ब्रजयोषिताम, ब्रजयोषिताम यानी गोपिकाएं जो रात दिन भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के विरह में तड़पती रहती थी, भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर उनके जो है तापों को क्या कर लिया, हरण कर लिया महाराज। तो ये भगवान की तरफ बढ़ते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं खम सोवत निर्भेगम शरद्दी मर तारकम सत्ययुक्तम यथा चित्तम शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया महाराज जो है इस शरद ऋतु का। कहते हैं जिस प्रकार से जो वेद हैं शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम, बहुत से लोग जो केवल वेद का मंत्र तो जानते हैं, जैसे आप लोग हम लोग शांति पाठ करते हैं तो शांति पाठ का अर्थ भी संग में चलना चाहिए, या ब्रह्मास्मि माला करते हैं तो इसका अर्थ भी संग में चले तो पाठ का फायदा। अब हम लोग कहते तो हैं शांति पाठ में कह दिया ये विषेम देव हितम यदायु, इतनी असाधारण बात हम बड़े साधारण रूप से रोज बोल देते हैं, क्योंकि वो हमने रट लिया, क्या किया है ना, विषेम देव हितम यदायु, जो कुछ भी आयु मुझे मिली है ये देव हित में ही लग जाए, क्या ऐसा करने में हम सक्षम हैं? हम तो महाराज एक घंटा सत्संग के लिए निकालकर सोचते हमने भगवान के ऊपर क्या कर दिया एहसान कर दिया प्रेमपुरी वालों के ऊपर, भगवान के ऊपर एक घंटा, हैं। और शांति पाठ में हम मंत्र बोलते हैं वसेम देव हितम यदायु, हमारा सारा जीवन भगवान के कार्य में ही क्या हो जाए, ये आप शांति पाठ में बोलते हैं। बड़े सुंदर अर्थ है महाराज एक एक चीज के, फिर कभी इस बात पे चर्चा करेंगे। तो यहां पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि जिस प्रकार से वेदों का अर्थ स्पष्ट रूप से जान लेने पर क्या होता है, सत्यगुणी चित्त परम शोभा को महाराज प्राप्त हो जाता है, सत्ययुक्तम यथा चित्तम। जिस समय वो वेद के अर्थ को जानकर महाराज, जैसे आपको अभी पता चला विषय में देव हितम यदायु का अर्थ जब हमारे अंदर उतरा तो महाराज हम प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, इसी प्रकार से वेदों के अर्थ को जान लेने पर सत्वगुणी जो साधक है उसका चित्त जो है परम शांत शोभायमान हो जाता है। जिस प्रकार से महाराज खम शोभत निर्मेघम कहते हैं, जिस प्रकार से खम यानी आकाश जो है निर्मेघ होकर बड़ी सुंदर सुंदर तारावलियों के साथ द्वारा सजा हुआ ताराओं की मालाएं जो है वहां पर श्रद्धिमल तारकम अमल जो रूप होता है, निर्मल आकाश का जो रूप है उसमें तारामंडल जिस प्रकार से जगमग ज्योति करता हुआ प्रकाशित होता है, इसी प्रकार से वेदों के अर्थों को हृदय में धारण करके वो महाराज सत्वगुणी साधक पूर्णतया महाराज परम प्रकाश को परमानंद को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से अखंड मंडलो व्योमनी रराजो डुगण शशि यथा यदुपति कृष्णो वृष्णि चक्राव्रतो भुवि, जिस प्रकार से महाराज पृथ्वी अखंड मंडल में जो है व्योमनी जो आकाश का विशाल क्षेत्र है, रराजो उडगण शशि चंद्रमा और उडगण यानी उडगण जो तारे हैं नक्षत्र मंडल है, ये जो महाराज सुंदर खिले हुए आकाश में निर्मल आकाश में परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, उसी प्रकार से महाराज पृथ्वी तल पे यथा यदुपति कृष्णो वृष्णि चक्राव्रतो भी, वृष्णि वंश में महाराज भगवान श्री कृष्ण परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज जो भगवान श्री कृष्ण की अवस्था का यहां पर वर्णन किया सुखदेव जी ने, कहते हैं अलिश्यशम शीतोष्णम प्रसून वन मारुतम जनास्तापम जहोर्गोप्यो ना कृष्ण हृत चेतशः। कहते हैं जो फूलों से आशिलस्य सम शीतोष्णम प्रसून वन मारुतम, जो जंगल की हवा जो फूलों से लदे हुए वृक्ष लताओं से होकर बहने वाली जो सुंदर वायु है वो उस समय वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है उस समय महाराज उसमें ना तो बहुत ज्यादा शीत होती है और ना बहुत ज्यादा उष्णता होती, ना गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंडक होती है, बड़ी मंद वायु होती है महाराज, सुंदर वायु होती है जिसके स्पर्श से लोगों के ताप जो है वो जनास्तापम जहूर उनके ताप शांत हो जाते हैं, लेकिन महाराज उस वायु के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो गोपिकाओं के हृदय की जलन को क्या कर दे, शांत कर दे। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण हृत चेतसा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित गोपिकाओं के हृदय को क्या कर लिया है, हरण कर लिया है, चुरा लिया है, उनके हृदय को चुरा कर महाराज अपने पास रख लिया, इसलिए उनके हृदय को ये सांसारिक वायु शांति प्रदान नहीं कर पाती महाराज, ये तो केवल सांसारिक व्यक्ति को ही शांति प्रदान करती है। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया हो, ध्यान देना, ज्ञानी महापुरुष तत्व ज्ञानी को महाराज तभी शांति मिलती है जब तक उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती, और जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती ये बाह्य जगत का आडंबर उसको कदाचित भी महाराज प्रसन्न नहीं कर सकता, चाहे वो खाने की चीजें हो, चाहे वो पहनने की चीजें हो, चाहे वो महाराज भोग भोगने की चीजें हो, कोई फर्क नहीं। सुखदेव जी गए राजा जनक के पास और महाराज उनको धूप में खड़ा कर दिया गया, धूप में खड़े रहे, जब महल में ले जाकर सुंदर सुंदर महाराज भोगों के बीच में बैठा दिया गया, वहां भी ठूट की तरह बैठ गए जाके महाराज, जो खिला दिया खा लिया, क्योंकि मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया, जब तक महाराज मीरा को गिरधर गोपाल नहीं मिलेंगे तब तक मीरा की पीड़ा जो है वो मिटने वाली सुखदेव जी कहते हैं जनास्तापम जहूर गोप्यम है, गोप्यों ना गोपिकाओं को नहीं कर सकती महाराज ये संतुष्ट, क्योंकि कृष्ण हृत चेतसा भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन को उनके चित्त को चुरा लिया है। जब तक उनके दर्शन नहीं होते गोपिकाओं के मन को बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती है। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से जो है वर्षा काल और उसके बाद जो है ये शरद ऋतु का जो है पूर्णतया आगमन होना प्रारंभ हो गया और उस समय धान की फसल जो चावल की फसल है वो कट के घर में आती है, जिसको आप दीप मालिका कहते हैं। उस समय जो है दीप मालिका का उत्सव होता तो जगह जगह पर जो है पुर ग्रामेश ग्रहण इंद्रियश्च महोत्सव, इंद्र के और जो है नवान्न प्राशन के उत्सव होने लगे। भवो भू पक्क सस्याड्या कलाभ्याम नितराम हरे, चारों तरफ पके हुए अनाज जो है लोगों के खेतों से घर में आने लगे महाराज और पकने लगे, और वहां पर नितराम हरे भगवान जो है अपने जो है भ्राता बलराम जी के संग उस सुंदर पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं जो चातुर्मास चल रहा था वो समाप्त हुआ और सब जितने भी वर्ष रुद्धा यथा सिद्धा स्वपिंडान काल आगते, सुंदर जो है चातुर्मास समाप्त होने पर जो सन्यासी थे, वणिक जो व्यापारी थे, मुनि जो तपस्वी थे, नृप जो राजा थे, स्नाता जो स्नातक विद्यार्थी थे, सब महाराज अपने अपने कार्य के लिए जो प्रारंभ हो गए, जो एक स्थान पर रहकर चातुर्मास का जो है उपयोग कर रहे थे, निर्गम्यार्थान प्रपेदिरे अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए, अपना जो उनका अभीष्ट था वो साधने में लग गए, और इस प्रकार से पूर्णतया शरद ऋतु का जो है आगमन प्रारंभ हो गया। ये वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का जो है वर्णन है सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया सीधा उपदेश है, है ना, कि किस प्रकार से सुखदेव जी ने साधारण सी जो सांसारिक प्रकृति में होने वाली वर्षा और शरद ऋतु की घटनाएं हैं उन घटनाओं से ही महाराज अमृत का दोहन कर लिया है ना। ये गुरु मंत्र है महाराज श्रीमद् भागवत के, यदि आप ग्रहण करना चाहें तो, अन्यथा तो महाराज फिर, क्योंकि पढ़ने के लिए तो राम नाम का एक अक्षर पर्याप्त है, और अगर ना पढ़ना हो तो महाराज शास्त्र के शास्त्र घोट डालो, मिलने वाला कुछ नहीं है। अन्यथा तो एक राम नाम से महाराज कबीरदास ने अपना उद्धार कर लिया है ना। तो इस प्रकार से ये प्रसंग, उसके बाद आपको जो है कल वेणु गीत सुनाएंगे है ना, श्रीमद् भागवत का बड़ा प्रसिद्ध भगवान की बांसुरी है ना, क्योंकि बांसुरी भगवान ने कहां बजाई है, केवल वृंदावन में, और वृंदावन में बांसुरी बजाने के बाद भगवान ने फिर मथुरा लेके नहीं गए बांसुरी अपनी, मुरली मनोहर कहां तक थे, क्योंकि मुरली सुनने के लिए भी क्या चाहिए, योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर योग्यता नहीं होगी तो मुरली वाला बेचारा मुरली बजाता रहेगा, तुमको कोई मजा आएगी, आनंद नहीं आएगा। तो भगवान की मुरली वेणु गीत जो है आपको, भरा पीडम नरवट नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजंतीम चमाला मालाम रंद्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ता। तो बहुत सुंदर भगवान का ये नटवर बपू रूप है और उनकी मुरली की विशेषता का हम लोग कल आनंद लेंगे। तो आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत से लोगों की इच्छा है कि एक भजन आज इतवार है सुना दें, समय है आप लोगों के पास, तो आइए एक छोटा सा भजन इसी क्रम में आपको सुना देते हैं जो हम लोगों ने अभी तक सुना है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, रजा हो जो तेरी, रजा हो जो तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। दुनिया का सहारा तो बहुत लिया, लेकिन यदि ईश्वर और ईश्वर की सत्ता समझ में आ गई है तो फिर जरा उसकी ओर भी निहारो। कैसे?
मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा।
लाली मेरे लाल की जिद देखो,
मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा, मेरे दिल में हर दम, मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी।
हम जो करते हैं और हमको क्या करना चाहिए ये बताता है ये पद। कैसे?
फिकर हो जो दिल में वो अपनी खता का, फिकर हो जो दिल में वो अपनी खता का, जिकर हो जो लब पर वो तेरी वफा का।
तुलसीदास जी कहते हैं गुण तुम्हार समझही निज दोषा।
फिकर हो जो दिल में वो अपनी खता का, जिकर हो जो लब पर वो तेरी वफा का, उठे जो सदा वो, उठे जो सदा वो तेरी बंदगी हो, तेरी सा ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो, तेरी सा।
और यदि सत्संग के माध्यम से आपके जीवन से देहाभिमान चला गया है और देहाभिमान नष्ट होकर ये अहंकार चूर चूर हो चुका है तो ये पद आपके लिए।
मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ, यही गीत लब पे, यही गीत लब पे मेरे हर घड़ी हो, तेरी सा मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी, तेरी वो मेरी खुशी हो, तेरी साथ
तेरी इच्छा ही प्रभु जब होवत दिन रात। मेरी इच्छा करण की रही कौन सी बात। तो ये जीवन के निर्णय है महाराज, निर्णय आपको करना है, स्वीकार करो या करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।